पाठ का प्रसंग ये चल रहा था कि तृतीय ज्ञान तक हम जाते हैं, प्रथम ज्ञान से लेकर के तृतीय ज्ञान तक, उसी तृतीय ज्ञान को लिंग परामर्श ज्ञान कहा जाता है, और उसके बाद जाकर के अनुमिति होती है। तो उसमें पिछले पाठ में सवाल खड़ा किया गया था कि महानस में माने रसोई घर में जिस समय में व्यक्ति धूम और बहनी को साथ साथ देखता है, उस समय में अग्नि की अनुमिति क्यों नहीं होती है। तो उसका जवाब ये दिया गया कि व्याप्ति ज्ञान जो है ना वो जरूरी होता है अनुमिति के लिए, क्योंकि महानस में जो धूम और बहनी का ज्ञान होता है उस समय में व्याप्ति ज्ञान नहीं रहता है। माने यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बहनी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये जो व्याप्ति ज्ञान है यह उस समय में नहीं रहता। उस समय में तो व्यक्ति जो है ना देखता ही है कि हाँ धुआं भी है और आग भी है, तो व्याप्ति ज्ञान नहीं होने के कारण जो है वहाँ पर अनुमिति नहीं होती है। तो कहा कि ठीक है, शुरू में ये होता है ना, बाद में तो उसी महानस में ही बहनी का व्याप्ति ज्ञान हो जाता है। तो बहनी व्याप्य धूम इस तरह का जो ज्ञान है यही तो है व्याप्ति ज्ञान। तो यह महानस में यह ज्ञान बाद में तो हो ही जाता है। तो जब महानस में व्याप्ति का ज्ञान हो गया उसके बाद जो है ना कम से कम अनुमिति का उदय होना चाहिए, अनुमिति होनी चाहिए। वही कहा व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानसे एव अग्नि अनुमीयताम, क्योंकि व्याप्ति निश्चय जब हो गया, व्याप्ति का ज्ञान जब हो गया महानस में, उसके बाद में महानस में ही है अग्नि की अनुमिति क्यों नहीं होनी होती है, क्यों उसको जो है ना पर्वत पर धुआं देखना पड़ता है, क्यों उसके बाद भी जो है ना कहना पड़ता है कि अयम पर्वत बहनी व्याप्य धूमवान, और जब इस तरह का ज्ञान होता है तब अनुमिति होती है। जब व्याप्ति ज्ञान हो गया महानस में तो उस समय में अनुमिति हो जानी चाहिए। तो उसका जवाब दिया महिभम कि नहीं, उस समय में इसलिए नहीं होता कि वहाँ पर अग्नि जो है ना दृष्ट है माने प्रत्यक्ष है, और जहाँ पर प्रत्यक्ष से कोई बात सिद्ध हो वहाँ पर अनुमिति की आवश्यकता ही नहीं होती। अनुमिति की आवश्यकता कब होती है, जब संदेह हो। जैसे संदेह है कि पर्वत पर बहनी है या नहीं है, तो ये संदेह हुआ, तो इस संदेह की स्थिति में अनुमिति की आवश्यकता होती है, अनुमिति की अपेक्षा होती है, अनुमिति की जाती है। लेकिन वहाँ महानस में तो अग्नि साक्षात दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। तो जब प्रत्यक्ष कोई वस्तु हो तो वहाँ पर अनुमिति जो का होना जो है ना वह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनुमिति के लिए दो आवश्यक शर्त है कि एक तो संदेह होना चाहिए तब अनुमिति होगी, और दूसरा शर्त है कि अनुपलब्ध होना चाहिए। अनुपलब्ध होना चाहिए माने वो वस्तु वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें नहीं है, प्रत्यक्ष भी है अग्नि, और प्रत्यक्ष अग्नि होने के कारण वहाँ पर संदेह भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर माने महानस में ही जो है अनुमिति नहीं हो पाती। व्याप्ति ज्ञान से पहले इसलिए नहीं हो पाती कि व्याप्ति ज्ञान नहीं रहता, व्याप्ति ज्ञान हो जाने के बाद महानस में अनुमिति इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पर जो है संदेह का अनुदय होता है, संदेह रहता ही नहीं है, वहाँ तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए अनुमिति नहीं होती। फिर आगे कहते हैं संदिग्धश्च अर्थः अनुमीयते, वही जो मैंने अभी बताया कि जो अर्थ संदिग्ध होता है उसी की अनुमीयते माने उसी की अनुमिति होती है। यथोक्तम भाष्य कृता, जैसे भाष्यकार ने कहा है। तो भाष्यकार का यहाँ मतलब पतंजलि मत समझना, भाष्यकार का मतलब न्याय दर्शन के जो भाष्यकार हैं। तो न्याय दर्शन के भाष्यकार कौन है, वात्स्यायन, उस भाष्य का नाम है वात्स्यायन भाष्य। जैसे व्याकरण में पातंजल भाष्य कहते हैं उसी तरह से न्याय दर्शन के भाष्य को वात्स्यायन भाष्य कहा जाता है। और वात्स्यायन भाष्य की ये पंक्ति आगे बता रहे हैं कि नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने दो चीज़ें जो बताई वो एक ही चीज़ से सिद्ध है, क्योंकि एक तो मैंने ये कहा कि जहाँ पर संदेह हो वहाँ अनुमिति होगी, दूसरा ये कहा कि अनुपलब्ध होना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष के द्वारा वह उपलब्ध है तो फिर जो है संदेह तो होगा ही नहीं। तो केवल एक ही कारण रखते हैं अनुमिति के लिए कि संदेह जहाँ होगा वहीं पर अनुमिति होगी। खैर, तो ये भूल सुधार करते हुए भाष्यकार की पंक्ति देखते हैं। इन्होंने कहा कि न अनुपलब्ध है, जो वस्तु अनुपलब्ध है माने जो वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं उसके बारे में अनुमिति नहीं होती। दूसरा कहा न निर्णीते अर्थ है, और जो अर्थ निर्णीत है पहले से जो है ना उस अर्थ के बारे में हमें जानकारी है, अर्थ माने वस्तु, उस वस्तु के बारे में जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में न्याय न प्रवर्तते माने अनुमिति जो है ना प्रवृत्त नहीं होती है, वहाँ पर अनुमिति नहीं संभव हो पाती है। तो अब आप किंतु संदिग्ध है तो कहाँ संभव होती है, तो संदिग्ध अर्थ में जो है अनुमिति संभव हो पाती है। तो अब इसको जो है ना अगर निष्कर्ष रूप में समझना चाहें क्लियर कट में, तो ये कहें कि दो स्थिति है जिसमें अनुमिति नहीं होती है, एक तो अनुपलब्ध स्थिति में, दूसरा निर्णीत स्थिति में। माने वस्तु का ज्ञान अगर किसी अन्य प्रमाण से हो रहा है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है बहनी का, तो वह निर्णीत अर्थ हो गया, तो उसमें अनुमिति नहीं होगी। और दूसरा का न अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध अगर कोई वस्तु है तो उसमें भी अनुमिति नहीं होती। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आकाश में जो है ना फूल नहीं होता, वो अनुपलब्ध है, तो उसके लिए अनुमिति जो है ना नहीं होती है। ऐसे ही वायु में रूप नहीं होता, तो जो वायु में रूप अनुपलब्ध है तो उसके लिए भी अनुमिति नहीं होती। अब जैसे मनुष्य के सर पर सिंह, वो भी अनुपलब्ध है, तो उसके लिए भी अनुमिति नहीं होगी। तो इस तरह से जो वस्तु अनुपलब्ध है और जो वस्तु पहले से निर्णीत है, तो इन दोनों स्थिति में अनुमिति नहीं होती है। तो ये तो हुआ अनुमिति कहाँ नहीं होती है इसकी स्थिति, कहाँ होती है उसके लिए भाष्यकार ने कहा किंतु संदिग्ध है, माने संदिग्ध अर्थ जहाँ होगा, संदिग्ध अर्थ मतलब संदेह से युक्त जो अर्थ है उसको कहेंगे संदिग्ध अर्थ। तो संदिग्ध अर्थ जहाँ रहता है वहीं पर अनुमिति होती है। तो महानस में कुल मिलाकर के व्याप्ति ज्ञान से पहले अथवा व्याप्ति ज्ञान के बाद महानस में अग्नि की अनुमिति नहीं क्यों होती है, इसका इन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया। अब आगे फिर ग्रंथ की पंक्ति को देखते हैं। अथ पर्वतगत मात्रस्य पुंसो यद धूम ज्ञानम तत् कथम न अग्निम अनुमापयति। अब उससे आगे बढ़ करके चलते हैं, कहा कि जब पर्वत पर पुंसो यद धूम ज्ञानम, पुंस माने पुरुष व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जब पर्वत पर धूम का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि द्वितीय ज्ञान जो है वह द्वितीय जो धूम ज्ञान है वो पर्वत पर ही तो होता है, तो पर्वतगत मात्र जो पुंस है पुरुष है उसका जो धूमक ज्ञान है, माने पर्वतगत मात्र पर्वत पर जो व्यक्ति गया हुआ है, पहाड़ पर जो व्यक्ति स्थित है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं पर्वतगत मात्र पुंसा। तो पर्वत पर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को यद धूमक ज्ञानम, जो धूम का ज्ञान होता है, वह जो धुआं देखता है कि धुआं उठ रहा है, तत् कथम न अग्निमनुमापयति, तो उस समय में द्वितीय ज्ञान जो है धूमक ज्ञान वो अग्नि का की अनुमिति क्यों नहीं करा पाता। अब ये प्रश्न क्या है, प्रथम ज्ञान में तो हो गया प्रश्न और उत्तर, अब द्वितीय ज्ञान के बारे में है। इसका तात्पर्य ये है प्रश्न पूछने का कि अभी ग्रंथकार ने पहले कहा हुआ है कि पहले उसको महानस में धूम ज्ञान होता है, फिर पर्वत में धुआं उठता हुआ देखता है वहाँ पर धूम ज्ञान होता है, उसके बाद उसको ये होता है कि इस पर्वत में जो है बहनी व्याप्य धूम है, इस तरह का ज्ञान होता है, ये तृतीय ज्ञान, उसके बाद अनुमिति होती है। तो यहाँ पर द्वितीय ज्ञान में सवाल किया जा रहा है कि द्वितीय ज्ञान के बाद ही अग्नि की अनुमिति हो जाए, तृतीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो उस अब इसमें सपोर्ट में बता रहे हैं प्रश्न पूछने वाले कि अस्ति च अत्र अग्नि संदेह, जब व्यक्ति कोई पर्वत पर खड़ा रहता है और वहाँ पर धुआं देखता है तो उस समय में उसको अग्नि का तो संदेह रहता है कि यहाँ पर अग्नि है अथवा अग्नि नहीं है। संदेह इसलिए होता है क्योंकि अग्नि दिखाई तो देती नहीं और बिना धुएं का की अग्नि जो है ना होती नहीं, क्योंकि उसको व्याप्ति ज्ञान पहले हो चुका है, वह समझता है कि ये दोनों साथ साथ रहने वाली चीज है। तो चूंकि प्रत्यक्ष से वो नहीं दिखाई देता और अनुमिति जो है अभी तक हुई नहीं है तो उसको संदेह होगा ना बहन के बारे में कि यहाँ पर बहनी अस्ति अथवा बहनी नास्ति। वही कह रहे हैं कि पर्वत पर खड़ा होकर के व्यक्ति जब वहाँ के धुआं को देखता है उस समय में जो उसको धूम ज्ञान रहता है उस समय में कैसा धूम ज्ञान रहेगा कि बहनी व्याप्य धूम, इस तरह का जो ज्ञान होगा वही है। तो इस ज्ञान के समय में अग्नि संदेह, अग्नि का संदेह है। अग्नि का संदेह कैसे है उसके लिए आगे बताया, साधक बाधक प्रमाण अभाव है ना, कहा कि अग्नि के लिए न वहाँ पर कोई साधक प्रमाण है और न कोई बाधक प्रमाण है। साधक प्रमाण कहते हैं जो भाव का प्रमाण हो और बाधक प्रमाण कहते हैं जो अभाव का प्रमाण हो। तो अग्नि के अस्तित्व का कोई प्रमाण वहाँ नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष से वह दिखाई दे नहीं रहा है, तो साधक प्रमाण का अभाव हो गया। और अग्नि के अभाव का कोई जो है वहाँ पर प्रमाण नहीं है, तो इस तरह से दोनों साधक प्रमाण के अभाव में और बाधक प्रमाण के अभाव में, क्योंकि वहाँ पर न अग्नि का निश्चय हो रहा है न अग्नि के अभाव का निश्चय हो रहा है। ठीक है, तो अग्नि का निश्चय नहीं है तो साधक प्रमाण का अभाव हो गया, अग्नि के अभाव का निश्चय नहीं है इस तरह से बाधक प्रमाण का अभाव हो गया। तो साधक पादा बाधक प्रमाण के अभाव के कारण संशयस्य न्याय प्राप्तत्वा, तो वहाँ पर संशय जो है वह तो उत्पन्न होगा ही होगा, वह तो न्याय प्राप्त है। न्याय प्राप्त है कहने का तात्पर्य ये है कि संशय कहाँ होता है, तो संशय वहाँ होता है जहाँ पर साधक प्रमाण का अभाव हो और बाधक प्रमाण का अभाव हो। तो यहाँ पर भी पर्वत पर व्यक्ति को धूम ज्ञान तो होता है किंतु उसमें संशय होगा, कैसे, क्योंकि साधक प्रमाण का भी अभाव है और बाधक प्रमाण का भी अभाव है। साधक प्रमाण का अभाव मैंने बताया कि अग्नि होने का निश्चय वहाँ नहीं है, और बाधक प्रमाण का अभाव है क्योंकि अग्नि अभाव का निश्चय जो है ना वहाँ पर उस व्यक्ति को नहीं हो रहा है। तो इस तरह से न्याय कहता है माने शास्त्र कहता है कि जहाँ साधक प्रमाण का अभाव हो और बाधक प्रमाण का अभाव हो वहाँ पर संशय होता है। तो यहाँ पर भी पर्वत में बहनी के भाव का बहनी के अभाव का दोनों के प्रमाण का अभाव है, इसलिए संशय वहाँ होगा। और भाष्यकार ने क्या कहा था कि जहाँ संदिग्ध वस्तु होगी, जहाँ संदिग्ध अर्थ होगा वहाँ पर जो है ना अनुमिति होगी। तो इन्होंने प्रश्न करने वाले ने सिद्ध किया कि द्वितीय ज्ञान जिस समय में रहता है पर्वत पर जब व्यक्ति धूम को देखता है उस समय में द्वितीय धूम ज्ञान रहता है, उस समय में संशय तो होता ही है उस व्यक्ति में कि अग्नि है कि नहीं है। तो इस तरह से संशय होने के कारण यहाँ पर तो अनुमिति होनी चाहिए, क्योंकि भाष्यकार ने भी कहा कि संदिग्ध जहाँ हो वहाँ पर अनुमिति होती है। इस तरह से प्रश्नकर्ता ने पूछा। अब जवाब देने वाले कहते हैं कि सत्यम, कि आपका कहना सही है कि उस समय में संशय तो रहता है उस व्यक्ति में। अब आगे जवाब देते हैं कि अगृहित व्याप्ते इव गृहित विस्मृत व्याप्ते अपि पुंसः अनुमान अनुदये न, कहा कि जैसे, अच्छा ये याद करिए, मैंने कहा सिखाया हुआ है कि ग्रह धातु का अर्थ शास्त्र में ज्ञान होता है। यहाँ अगृहित व्याप्ति मतलब अज्ञात व्याप्ति, माने जिसको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को भी अनुमिति नहीं होती। इसी तरह से गृहित विस्मृत व्याप्ते अपि न अनुमिति, माने जिसने को एक बार तो व्याप्ति ज्ञान हो गया किंतु वह बाद में विस्मृत हो गया, वह उस व्याप्ति ज्ञान को भूल गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है ना अनुमान का उदय नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को भी अनुमिति नहीं होती। इसलिए व्याप्ति स्मृते अपि अनुमिति हेतुत्वात्, इसलिए जैसे व्याप्ति ज्ञान जो है कारण है अनुमिति में, माने व्याप्ति ज्ञान होगा तभी अनुमिति होगी, उसी तरह से व्याप्ति की स्मृति भी कारण है अनुमिति में, माने व्याप्ति का स्मरण होगा तभी अनुमिति होगी। तो महानस में तो इसलिए नहीं हो रहा था कि वहाँ पर व्याप्ति ज्ञान नहीं था। जब व्याप्ति ज्ञान हो गया तो फिर महानस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष सिद्ध है, वहाँ संदेह नहीं था। अब जब वह व्यक्ति पर्वत पर गया हुआ है उस समय में उसके पास व्याप्ति ज्ञान है, उसमें संदेह भी है बहनी के बारे में, किंतु एक चीज नहीं है क्या, तो व्याप्ति की स्मृति नहीं है। जबकि व्याप्ति स्मृति भी कारण है अनुमिति में, वही कहा व्याप्ति स्मृति अपि अनुमिति हेतुत्वात्, अनुमिति का हेतु जो है वह व्याप्ति स्मृति भी है। फिर आगे कहते हैं कि धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कार व्याप्ति स्मरति, वह जो व्यक्ति है पर्वत पर खड़ा है उसको जब धूम दर्शना, जब धूम का दर्शन होता है, धुएं को वह देखता है, तो धुएं को देखने से उसका संस्कार जो है वह उद्बुद्ध हो जाता है, माने उसके अंदर का संस्कार जागृत होता है, और संस्कार के जागृत होने से व्याप्तिम स्मरति, उसको जो पहले पूर्व में जो व्याप्ति ज्ञान हुआ रहता है महानस में कि महनी व्याप्य धूमहा, इस तरह का जो ज्ञान रहता है उसका वह स्मरण करता है व्यक्ति। आगे कहते हैं यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसम, इस तरह से स्मरण करता है वह व्यक्ति पर्वत पर धुआं को देख करके कि जो जो धूमवान है माने धूम से युक्त है, सहसा अग्निमान वह वह जो है अग्नि से युक्त होता है, यथा महानसम जैसे रसोई घर, इस तरह से व्याप्ति का स्मरण करता है। तेना धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतो भूतायाम, माने पर्वत पर धूम का दर्शन हुआ उसके बाद व्याप्ति स्मृतो, व्याप्ति की स्मृति हुई माने व्याप्ति का स्मरण हुआ, उसके बाद यद धूमक ज्ञानम तत्तृतीयम धूमवांश्च अयम, उसके बाद तृतीय धूम ज्ञान होता है क्या कि अयम धूमवान, अयम माने अयम पर्वत धूमवान, यह पर्वत जो है धूम से युक्त है। इस तरह से जब तृतीय ज्ञान होता है ये कब होता है, व्याप्ति स्मृति के बाद। इति तदेव अग्निम अनुमापयति नान्यत, वही जो तृतीय ज्ञान है वही अग्नि का अनुमिति कराता है, नो अन्यत, अन्यत माने प्रथम ज्ञान और द्वितीय ज्ञान जो है अनुमिति नहीं कराता है। यदेव अनुमानम सैव लिंग परामर्श, जो अनुमान है उसी को लिंग परामर्श करते हैं, अनुमान माने अनुमिति का करण, तेना व्यवस्थितम एतत् लिंग परामर्श अनुमानम, इस तरह से लिंग परामर्श अनुमान कहलाता है, और वो कैसे होता है क्या होता है इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित हो गया, हमने सही तरीके से उसको यहाँ पर ग्रंथ में समझा दिया है, ऐसा केशव मिश्र जी कह रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं।